स्वागत है आपका दिन भर में। मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 24 जनवरी और दिन शुक्रवार। कोरोना वायरस से अब तक चीन में 26 लोगों की मौत। मुंबई में भी दो संदिग्ध मामले सामने आए हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर झारखंड के लोहरदगा में कर्फ्यू।
आप लोगों से अनुरोध है कि सभी अपने अपने घर को जाएं, यहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्लीज।
विवेचना में आज जानेंगे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के आखिरी प्यार के बारे में।
ये रिलेशनशिप बहुत सारे लेयर्स में है, एक डिस्क्रिप्शन इसे नहीं दिया जा सकता है। क्वीन ऑफ कोर्स वाज इन हर 70s, अब्दुल करीम वाज वेरी यंग, ही वाज गुड लुकिंग।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों को संक्रमित कर चुका है। दुनिया के कुछ दूसरे देशों में भी इससे संक्रमित लोगों की पहचान की गई है। चीन में इस वायरस की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। वुहान में तो पहले से ही यातायात सुविधाएं बंद हैं और अब इस दायरे को हुबेई प्रांत तक फैलाया गया है। इस प्रतिबंध के कारण 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। हुबेई प्रांत की सीमा रूस से लगती है। देश भर में अभी तक इससे संक्रमित 830 लोगों की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर में भी कुछ संक्रमित मामले सामने आए हैं। भारत में भी इसे लेकर हवाई अड्डों पर सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेएनयू के छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने अभी तक नए अकादमिक सत्र के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है, वे अब पुराने हॉस्टल मैनुअल के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष और अन्य पदाधिकारियों ने 28 अक्टूबर को इंटर हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से जारी हॉस्टल मैनुअल में बदलाव करने वाले निर्देशों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जस्टिस राजीव शकधर की बेंच ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी को भी नोटिस भेजा है। नए हॉस्टल मैनुअल में फीस बढ़ गई है, जिसका यूनिवर्सिटी के छात्र विरोध कर रहे हैं। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि इराक में मौजूद सभी अमरीकी सैनिकों को जल्द से जल्द यहां से निकाल दिया जाए। शिया धर्मगुरु मुख्तादा अल सदर ने यह विरोध प्रदर्शन बुलाया था, जिसमें लाख लोगों से अधिक लोगों ने शिरकत की। अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से बगदाद में तनाव का माहौल है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अमरीकी सेना के खिलाफ नारे भी लगाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, इराकियों ने आज संप्रभुता के हक में लाखों की संख्या में प्रदर्शन किया। पिछले 16 सालों से हमारी संप्रभुता पर हमला हो रहा है, कभी अमरीकी सैनिकों द्वारा तो कभी दूसरे विदेशियों द्वारा। आज इराकियों ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप के विरोध में खड़े होने के लिए लाखों की संख्या में रैली निकाली। एक प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा के लिए और इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। ये समस्या रेगिस्तानी टिड्डियों के विशाल झुंड के हमले के कारण पैदा हो गई है। कीनिया में टिड्डियों के एक एक झुंड को 40-40 किलोमीटर बड़ा बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के बुकर तिजानी ने नैरोबी में एक प्रेस संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा, कीनिया में ये बहुत सालों बाद हो रहा है। पिछले कई सालों से ऐसी स्थिति सामने नहीं आई। इथोपिया में भी बीते कई सालों से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो ऐसे में लोग इसके बारे में भूल गए हैं। लेकिन ये वापस आ गया है और अब ये हमारी आजीविका को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मुश्किल समय से निपटने में हमारा सहयोग करें और हमारे साथ खड़े रहें। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के शब्द। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। बोल्सोनारो की ये पहली भारत यात्रा है। उनके साथ एक शिष्टमंडल भी भारत आया हुआ है। जिम्बाब्वे की सरकार ने आगाह किया है कि उनके खाद्य कोष में अब सिर्फ 1 महीने के लिए ही अनाज का भंडार मौजूद है। जिम्बाब्वे में बीते 1 दशक का ये सबसे भयानक सूखा पड़ा है, जिसकी वजह से वहां खाद्य स्थिति का संकट पैदा हो गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम दिन भर में। मैं हूँ इकबाल अहमद। आज है जनवरी की 24 तारीख और दिन है आज शुक्रवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कोरोना वायरस से। चीन में अब तक कोरोना वायरस से 26 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच चीन ने वुहान समेत 10 शहरों में लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी है। चीन में अब तक 830 लोगों के इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस वायरस से दुनिया भर में कितना असर होगा। जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता तारिक जसारेविक ने कहा कि इस वायरस के केस बढ़ सकते हैं। उनका कहना था,
It's still too early to draw the conclusions on how severe the virus is.
इस वायरस का असर कितना होगा, क्योंकि किसी भी बीमारी के फैलने में सबसे पहले आप सबसे गंभीर मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद हम उन मामलों को देखते हैं जिनमें मरीज थोड़ा बहुत बीमार होता है और उनका टेस्ट कभी नहीं होता और वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए फिलहाल उसकी संख्या बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है, जो कि हम जानते हैं कि बढ़ेगा ही। जब उनसे यह पूछा गया कि अभी तक इस वायरस ने से निपटने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनाया जा सका है, ना कोई एंटीवायरल, ना कोई दूसरी दवा, इस पर तारिक जसारवि का कहना था,
There is no particular treatment, but it doesn't mean that you cannot treat people. And if you look into our clinical guidance,
इसका कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों का इलाज नहीं कर सकते। और अगर आप क्लिनिकल गाइडेंस को देखें तो आपको पता चलेगा कि लोग किस सिम्टम्स के शिकार हैं। उनको सांस लेने में दिक्कत है या बुखार है, गंभीर मामले में लोगों को न्यूमोनिया हो सकता है। इसलिए लोगों की हालत को देखते हुए उनका इलाज किया जाना चाहिए, लेकिन इस वायरस की कोई खास दवा नहीं बनाई जा सकी है। ठीक उसी तरह जैसे MERS मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं मिल सका है, जो कि 2012 में सामने आया था। इस बीच मुंबई में भी 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। सीधे चलते हैं मुंबई, जहां मौजूद है बीबीसी संवाददाता जानवी मूले। जानवी, बताएं आपके पास क्या जानकारी है?
जी, शुक्रवार की दोपहर तक जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार मुंबई में 1700 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग की गई एयरपोर्ट पर। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो अफेक्टेड कंट्रीज से आए थे, और उनमें से 2 लोगों को खांसी और जुकाम की शिकायत दोनों ने की थी। इसके लिए सावधानता बरतते हुए उन्हें शहर के कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। उनके सैंपल्स, ब्लड के सैंपल्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पुणे में भेजे गए हैं, और अभी तक उसका रिपोर्ट तो कुछ नहीं आया है। लेकिन पूरे देश भर में 7 जगह एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग हो रही है, और खास करके जो लोग चीन से आ रहे हैं या फिर चीन में जा रहे हैं उनके लिए भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है।
बहुत शुक्रिया जानवी आपका। और अब बात नागरिकता संशोधन कानून की। झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी। चश्मदीदों ने बताया है कि जुलूस में कथित तौर पर भड़काऊ गाने बजाने के बाद 2 गुटों में झड़प हो गई। इस दौरान पथराव और आगजनी भी हुई। फिलहाल वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहले सुनते हैं कि जिले की DC आकांक्षा रंजन क्या कह रही हैं। ये थी आकांक्षा रंजन जो बता रही थी कर्फ्यू लगा दिया गया। और ताजा जानकारी के लिए अभी से थोड़ी देर पहले मैंने बात की रवि प्रकाश से।
देखिए, कर्फ्यू तो पूरे लोहरदगा जिले में लगा दी गई है और कर्फ्यू अभी जारी है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कल डिसाइड करेगा कि उसको कर्फ्यू में ढील देनी है या नहीं देनी है। हालांकि आज हिंसा नहीं हुई है, हिंसा की ताजा वारदात आज नहीं हुई है। दरअसल हुआ क्या था कि कल विश्व हिंदू परिषद ने एक जुलूस निकाला था CAA के समर्थन में, और जुलूस में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ भड़काऊ गाने बजे, तो एक मेनका सिनेमा हॉल है उसके पास में उस गाने को लेकर विवाद हुआ, और वह विवाद इतना हिंसक हो गया कि पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, कई लोग घायल हो गए। एक बच्चा 12 साल का उसमें घायल हुआ है जो किसी गैराज में काम करता था, वो काफी सीरियस है, उसको रांची में एडमिट कराया गया है। और इसके बाद सरकार ने जो प्रिकॉशंस लिए हैं, तो 2000 पुलिस और पारा मिलिट्री के जवान लोहरदगा में डिप्यूट किए गए हैं, 6 IPS डिप्यूट किए गए हैं वहाँ के जो लोकल SP हैं उनके अलावा। इसके अलावा वहाँ पे IG अभियान को भेजा गया है। तो इस तरीके से पुलिस और प्रशासन ने तत्काल व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए ये कार्रवाइयां की हैं, और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि लोहरदगा में कल अगर कोई हिंसा की वारदात नहीं होती है तो शायद कर्फ्यू में ढील दिया जा सके।
जी ये थे रांची से रवि प्रकाश। उधर महाराष्ट्र में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने आज महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। सीधे चलते हैं मुंबई जहां मौजूद हैं बीबीसी संवाददाता प्रजक्ता पोल। और प्रजक्ता ये बताएं कि इस बंद का कितना असर देखा गया महाराष्ट्र में?
जी इस ये बंद जो पुकारा गया था उसका एक मिला जुला असर देखने को मिला। पुणे में एक सड़कों पे एक हलचल सामान्य रही और स्कूल और कॉलेजेस जो थे वो नॉर्मल खुले रहे थे, लेकिन एक जगह पे चेंबूर में बेस्ट की बस जो है उस पे पत्थरबाजी हुई और उसमें जो ड्राइवर है, बस के ड्राइवर है, वो घायल हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसके अलावा औरंगाबाद में भी एक बस के ऊपर जो है पत्थरबाजी हुई, लेकिन इसके अलावा बाकी जगहों पे दुकानें खुली थी, सड़कें चल रही थी, स्कूल और कॉलेजेस भी चालू थे और बहुत जगह पे जो है नॉर्मल वाहनों का भी ये सब जो ट्रैफिक है वो भी नॉर्मल चल रहा था और बाकी दुकानें बाजार सब कुछ चालू था। लेकिन कुछ जगह पे जो सड़कों पे हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को देखा, बहुत सारे वंचित बहुजन अघाड़ी के जो कार्यकर्ता है वो सड़क पे उतर आए थे, इसीलिए लोगों में थोड़ी सी घबराहट दिखी, लेकिन इतना असर जो है मुंबई में नहीं दिखा। पुणे में भी वही हमें हाल दिखाई गया। पुणे, ठाणे, नासिक इस जगह पे सब नॉर्मल था, जो बंद का जो असर है वो दिखाई दिया, एक मिला जुला असर देखने को मिल रहा। और औरंगाबाद में थोड़ा सा हम लोग ने देखी पत्थरबाजी हुई और मुंबई में सिर्फ एक जगह पे जो है वो पत्थरबाजी हुई, अदरवाइज जहां हिंसक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा।
जी बहुत शुक्रिया प्राजक्ता, माफ करिएगा समय की का अभाव है। और अब बात विवेचना की। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को एक ऐसी मलिका के रूप में याद किया जाता है जिसके साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता था, लेकिन उनके शासनकाल के दौरान एक युवा भारतीय मुंशी अब्दुल करीम का उन पर ऐसा असर हो गया कि पूरा राज परिवार इसे लेकर परेशान हो उठा था। महारानी विक्टोरिया की 119वीं पुण्यतिथि पर रेहान फजल याद कर रहे हैं महारानी विक्टोरिया और अब्दुल करीम के नज़दीकी और असामान्य संबंधों को आज की विवेचना में।
अपनी जिंदगी के आखिरी 13 सालों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने अब्दुल करीम के साथ बिताया। अब्दुल करीम को शुरू में भारत से उनके खिदमतगार के तौर पर भेजा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो उनके सबसे करीबी लोगों की श्रेणी में आ गए और हर तरह के विरोध के बावजूद उनका ये संबंध जारी रहा। इन दोनों के संबंधों को किस तरह परिभाषित किया जा सकता है, मैंने यही सवाल रखा विक्टोरिया एंड अब्दुल द ट्रू स्टोरी ऑफ द क्वींस क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट की लेखिका श्रबनी बसु के सामने।
ये रिलेशनशिप बहुत सारे लेयर्स में है, एक डेफिनेशन, एक डिस्क्रिप्शन इसे नहीं दिया जा सकता है। क्वीन ऑफ कोर्स वाज इन हर 70s, अब्दुल करीम वाज वेरी यंग, ही वाज गुड लुकिंग, ये अभी 24 साल के थे जब वो आए फर्स्ट लंदन। देयर इज एन अट्रैक्शन डेफिनेटली, क्योंकि शी चूजेस हिम। दो खानसा में आए थे, खानसा में नहीं एक्चुअली टेबल वेटर्स जैसे कहते हैं, शी चोज अब्दुल करीम। ये एक्चुअली दो कंट्रीज के बीच में जैसे एक अट्रैक्शन था, इट बिकेम लाइक दैट एट वन टाइम शी इज मदर, फिर कभी क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो लिखती है कि यू नो आई एम योर क्लोजेस्ट फ्रेंड, एक दो चिट्ठिया में लिखती है कि यू नो हाउ मच यू मीन टू मी, फिर किसी चिट्ठियों में वो 3 X's मार्क करती है जैसे वो साइंस है फॉर लिटिल किसेस। सो दिस इज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया और इतनी डिटेल में इतना फ्रीली लिख रही है टू अ वेरी ऑर्डिनरी मैन।
करीम को आगरा से लंदन भेजा गया था महारानी की सेवा करने के लिए, लेकिन साल भर के अंदर ही वो किचन बॉय की श्रेणी से आगे निकलकर महारानी के मुंशी बन गए।
आगरा जेल में वो क्लर्क थे, उनका ईयरली सैलरी था 60 रुपीज, उनके फादर भी वहाँ एक असिस्टेंट डॉक्टर थे, तो आगरा जेल में दोनों फादर और सन दोनों काम करते थे। और क्वींस जुबली जब आई तब आगरा जेल के जो सुपरिंटेंडेंट थे उन्होंने सोचा कि क्वीन को कुछ अच्छा सा प्रेजेंट भेजा जाए, सो फॉर हर जुबली ही सेंट 2 प्रेजेंट्स, और वो 2 प्रेजेंट्स क्या थे, 2 इंडियन सर्वेंट, बहुत ड्रेस अप करके, टर्बन्स पहन के, अच्छा अच्छा सिल्कन ड्रेस पहन के, ताकि वो एग्जॉटिक लगे. और बेसिकली उन्हें डेकोरेशन पीसेस जैसे हम कह सकते हैं भेजा गया था टू इंग्लैंड. शुरुआत में दे वर डेकोरेशन पीसेस, लेकिन धीरे धीरे करीम के साथ द क्वीन स्टार्टेड यू नो गेटिंग रियली क्लोज.
विक्टोरिया करीम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें उर्दू सिखाने के लिए कहा. करीम रानी की नोटबुक में उर्दू की एक लाइन लिखते, उसके बाद वो उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते और फिर उर्दू के वाक्य को रोमन में लिखते. महारानी विक्टोरिया इसको हूबहू अपनी नोटबुक में उतारती.
Actually, really wanted to learn Urdu. So he became her teacher and he taught her for 13 years. One of the things very few people know about Queen Victoria is that she could read and write in Urdu.
Maharani वास्तव में उर्दू सीखना चाहती थी. करीम उनके अध्यापक बन गए और उन्होंने 13 सालों तक उन्हें उर्दू सिखाई. बहुत कम लोग जानते हैं कि रानी उर्दू लिखना और पढ़ना दोनों जानती थीं और उन्हें इस बात का बहुत फख्र भी था. ये बात अब अविश्वसनीय लगती है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्होंने एक नई जुबान सीखने का बीड़ा उठाया और उसमें कामयाब भी हुई. चाहे वो यात्रा कर रही हूँ या छुट्टी मना रही हूँ, वो उर्दू के पाठ लेना नहीं भूलती थी. हर रात वो कुछ समय उर्दू के अभ्यास के लिए जरूर देती थी.
महारानी विक्टोरिया के उर्दू प्रेम पर लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुमायूं अंसारी ने भी काफी शोध किया है.
Here we have an example from the Queen's Hindustani diary. आज का दिन बहुत अच्छा रहा. शाह पर शाह आज हमारी मुलाकात को मैं चंद वजीरों के आई. The day was very fine. The Shah of Persia came to see me today with some of his ministers at 2 o'clock. The script has been written with a certain amount of fluency.
रानी विक्टोरिया के आलेख में रवानी और उत्साह है. वो एक ऐसी चीज पर महारत करने की कोशिश कर रही हैं जिससे उनका दूर दूर का वास्ता नहीं है. इस पर महारत हासिल करने के लिए जिस कौशल की जरूरत है वो मामूली चीज नहीं है. उन्होंने जो भी उपलब्धि हासिल की है उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, खास तौर से ये देखते हुए कि उन्होंने साल भर पहले ही ये जुबान सीखनी शुरू की थी.
लेकिन इस दोस्ती का एक और परिणाम हुआ कि इंग्लैंड में पहले से ही लोकप्रिय भारतीय व्यंजन चिकन करी और लोकप्रिय हो गया. करीम ने रानी के लिए चिकन करी, दाल और पुलाव बनाया. महारानी विक्टोरिया ने 20 अगस्त 1887 को अपनी डायरी में लिखा कि आज मैंने अपने भारतीय नौकर के हाथों बनी बेहतरीन चिकन करी खाई. लेकिन यह पहला मौका नहीं था जब महारानी विक्टोरिया ने चिकन करी का लुत्फ उठाया था. ब्रिटेन की जानी मानी खाद्य इतिहासकार एनी ग्रे अपनी किताब द ग्रीडी क्वीन ईटिंग विद विक्टोरिया में लिखती हैं,
29 दिसंबर 1847 में विंसर कासेल के मेन्यू में करी दे पोले का उल्लेख मिलता है, लेकिन उस करी और करीम की बनाई करी में जमीन आसमान का अंतर था. उस करी में फलों, हल्दी और क्रीम का इस्तेमाल होता था. उस जमाने में बचे हुए गोश्त और सब्जियों को मिलाकर करी बनाई जाती थी और उसे बहुत उच्च स्तर का खाना भी नहीं माना जाता था. लेकिन करीम के आने के बाद भारतीय खानसा में सब कुछ अपने हाथों से करने लगे थे. वो हलाल गोश्त का इस्तेमाल करते थे. वो रसोई में मौजूद किसी भी मसाले को इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि भारत से लाए गए मसालों को दो पत्थरों के बीच में पीसते थे. 1880 के दशक में हफ्ते में 2 दिन रानी विक्टोरिया को करी परोसी जाती थी, रविवार को दिन के खाने में और मंगलवार को रात के खाने में. करीम के कहने पर उन्होंने भारत से खास तौर से आम मंगवाया था, लेकिन वो जब तक उन तक पहुँचा वो सड़ चुका था.
इसके अलावा करीम ने महारानी के मन में भारत के प्रति एक खास तरह की छवि बनानी शुरू कर दी. कहने को विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी थीं, लेकिन उन्हें कभी भारत जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो समुद्र की यात्रा नहीं कर सकती थी.
Queen Victoria had never been to India and she longed to know more about the country. She wanted to, you know, she wanted the story from the streets and this is what Karim brought to her. He brought her the
उन्हें कभी भारत जाने का मौका नहीं मिला था. उन्हें भारत के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी. वो चाहती थी कि उन्हें बताया जाए कि भारत की सड़कों पर क्या हो रहा है. करीम ने उनकी ये इच्छा पूरी की. उन्होंने भारत की आत्मा को उन तक पहुंचाया. انہوں نے انہیں بھارت کی گرمی، دھول، تہواروں اور یہاں تک کی راجنیتی کے بارے میں بھی بتایا۔ کریم نے انہیں ہندو مسلم دنگوں اور الپ سنکھیوں کے طور پر مسلمانوں کی سمسیاؤں کے بارے میں بھی اوگت کرایا۔ اس جانکاری کے آدھار پر رانی وکٹوریا نے وائسرائے کو پتر لکھے اور ان سے اپنے سوالوں کے جواب مانگے۔
رانی وکٹوریا سے عبد الکریم کی نزدیکی اس حد تک بڑھی کہ وہ ان کے ساتھ سائے کی طرح رہنے لگے۔ ایک بار جب وہ بیمار پڑے تو رانی پروٹوکول توڑ کر انہیں دیکھنے ان کے گھر گئیں۔ رانی کے ڈاکٹر رہے سر جیمز ریڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں،
جب کریم بستر سے اٹھنے میں اسمرتھ ہو گئے تو رانی وکٹوریا ان کے گھر انہیں دیکھنے دن میں دو بار جانے لگیں۔ وہ اپنا بستہ بھی ساتھ لے جاتی تھیں تاکہ کریم انہیں لیٹے لیٹے ہی اردو پڑھا سکیں۔ کبھی کبھی تو میں نے رانی کو ان کا تکیہ ٹھیک کرتے بھی دیکھا ہے۔ رانی چاہتی تھیں کہ مشہور چترکار وان اینجلی کریم کا تیل چتر بنائے۔ انہوں نے اپنی بیٹی وکی سے کہا تھا کہ اینجلی عبد الکریم کا چتر بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے کسی بھارتی کا چتر نہیں بنایا ہے۔
رانی ان سے اتنی پربھاوت ہوئی کہ انہوں نے انہیں آگرہ میں 300 ایکڑ کی جاگیر دلوائی، اپنے تینوں راج محلوں میں ان کو الگ الگ گھر دلوائے، انہیں اپنے سینے میں پدک لگا کر چلنے اور تلوار رکھنے کی بھی چھوٹ دی گئی۔ مہارانی نے آگرہ میں حکیم کا کام کرنے والے کریم کے پتا کو پینشن دلوانے کا بھی آدیش پارت کروایا۔ سر جیمز ریڈ اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں،
اس سال جون میں منشی کے پتا ان کے پاس برٹن آئے۔ ان کے آنے سے ایک مہینے پہلے ہی ایلیکس پروفیٹ کو رانی نے نردیش دیا کہ ان کے کمرے کو ٹھیک سے فرنش کیا جائے اور یہ جانچ کر لی جائے کہ وہاں سینٹرل ہیٹنگ ٹھیک سے کام کر رہی ہے یا نہیں۔ منشی کے پتا ونڈسر کاسل میں حقہ پینے والے پہلے شخص بنے۔ انہیں اس کمرے میں ٹھہرایا گیا جس میں سامانیہ پردھان منتری لارڈ سیلزبری رکا کرتے تھے۔ رانی نے اپنے پوتے جارج سے خاص طور سے کہا کہ وہ اپنے دستخط کیے ہوئے فوٹو کی دو پرتیاں منشی کو دے دیں تاکہ وہ ایک فوٹو اپنے پتا کو بھیج سکیں۔
نتیجہ یہ ہوا کہ راج محل کے سبھی لوگ منشی عبد الکریم کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے ان کے خلاف مہارانی کے کان بھرنے شروع کر دیے۔
ایسا ایک کانفلکٹ ہو گیا کورٹ میں کہ ایک دم اٹ ریچڈ اے لیول وین دی ہول ہاؤس ہولڈ سیڈ وی آر گوئنگ ٹو گو آن اسٹرائک، ہم اسٹرائک کریں گے، ہم ہڑتال کریں گے، ہم کلیکٹیولی سب ریزائن کریں گے اگر کریم کو کوئین یورپ لے جاتی ہے۔ ایسا ڈسکرپشن ہے ہمارے پاس کہ جب انہیں یہ بولا گیا کہ ہم سب کلیکٹیولی اسٹرائک کریں گے تو شی تھرو ایوری تھنگ، اپنے ڈیسک میں جو جو تھا نا، شی جسٹ تھرو دیم آل آن دا گراؤنڈ۔ الٹیمیٹلی یہ ہوئی کہ نو بڈی ریزائن، دا کوئین ٹک کریم اینڈ دے ور آل سو اینگری۔ تو جو فیورز کریم کو مل رہا تھا یہ لے کے تو کورٹ میں بہت ہی جیلسی ہوئی نیچرلی دیٹ اے کامنر از گیٹنگ سو مینی فیورز۔
سوال اٹھتا ہے کہ کیا رانی اور عبد الکریم پریمی تھے؟
There's a lot of gossip in the court and we go by you know what the others were saying and also the fact that she
نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہے، لیکن دربار میں پیٹھ پیچھے اس طرح کی بہت سی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار ضرور وہ کریم کو ہائی لینڈ کی ایک کاٹیج میں اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ان دونوں کے بیچ کچھ شاریرک تھا، ہم کہہ نہیں سکتے، یہ تو وہ دونوں ہی جانتے ہوں گے، لیکن یہ تتھیہ ہے کہ دونوں کے بیچ کافی آتمیتا تھی۔ اس کا آبھاس ہمیں رانی کے لکھے پتروں سے ملتا ہے۔ وہ انہیں دن میں 6 بار پتر لکھا کرتی تھی، تم آؤ اور مجھے گڈ نائٹ کہو وغیرہ وغیرہ۔ وہ ہمیشہ مہارانی کے ساتھ دیکھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگ دربار میں کئی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے جان براؤن کی جگہ لے لی تھی۔ کریم سے پہلے جان براؤن مہارانی کے سہایک ہوا کرتے تھے، جن سے ان کی بہت گھنشتا تھی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو تھا دونوں کے بیچ۔
23 جنوری 1901 کو جب رانی وکٹوریا نے انتم سانس لی تو ان کے پارتھیو شریر کے انتم درشن کے لیے ان کے بیٹے اور اترادھیکاری ایڈورڈ سپتم اور ان کی پتنی رانی الیگزانڈرا، ان کے بیٹوں، پوتوں اور ان لوگوں کو بلایا گیا جو دربار میں رانی کے بہت قریب ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد راجہ نے عبد الکریم کو رانی کے شیان کچھ میں داخل ہو اپنی شردھانجلی دینے کی اجازت دی۔ ان کے پارتھیو شریر کو ایکانت میں دیکھنے والے عبد الکریم انتم شخص تھے، لیکن مہارانی کے انتم سنسکار کے کچھ دنوں کے بھیتر ہی عبد الکریم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے گھر پر چھاپا مارا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ہر اس پتر کو راجہ کے حوالے کر دیں جو رانی نے انہیں لکھے تھے۔ پھر انہی کے سامنے उन सारे पत्रों को जला दिया गया।
तब सारा एस्टेब्लिशमेंट जैसे कह सकते हैं ना, करीम पे टूट पड़ी कि अब यू नो नाउ वी कैन गेट आवर रिवेंज ऑन हिम। रेड हुआ उनके घर के ऊपर और सारे चिट्ठियां जलाई गई उनके घर के बाहर। उनके वाइफ और उनके नेफ्यू खड़े थे, उनके सबके सामने वो चिट्ठियां जलाई गई। बहुत ही जलील किया गया और बोला गया कि आप अब जाओ, गो बैक टू इंडिया। ही वाज डिपोर्टेड क्लियरली, सो ही वाज सेंट बैक एंड आगरा ही लिव्ड। ही हैड बीन गिवन लैंड, क्वीन ने उनके लिए प्रोवाइड किया था, बट वहां ही डाइड विद इन 8 years। 1909 में ही डाइड।
इसके बाद ऑस्बर्न हाउस में ना तो पगड़ियां दिखाई दी और ना ही शाही रसोई घर से भारतीय मसालों की खुशबू आई। नए महाराजा एडवर्ड सप्तम के राज में भी चिकन करी तो बनती रही, लेकिन उनको बनाने वाले भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज हांसा में थे। रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
और अब खेल।
भारत ने न्यूजीलैंड को 5 T20 मैचों की सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से मात दे करके सीरीज में बढ़त बना ली है। क्रिकेट के साथ मैं हूं इंदु पांडे। मैच में भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पे 203 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 19 ओवर में 4 विकेट पे ही 204 रन बना लिए और मैच को जीत लिया। आज के मैच में श्रेयस अय्यर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए क्या कहते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली?
मैं इसे शानदार जीत कहूंगा क्योंकि अभी तो मुंबई में खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी जो है जाके न्यूजीलैंड में खेल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इतनी आदत हो गई है, फिटनेस इनकी इतनी अच्छी है, इनको इनकी तैयारी इतनी अच्छी है प्लेयर्स की कि फर्क ही नहीं लगा। मतलब आप वन डे से सीधे T20 में उतरे हैं और इतना ट्रैवल करके आप गए हैं, कहीं पे भी वो जेटलैग जिसे एक चीज पहले सुना करते थे वो तो लगी नहीं कहीं। अच्छी शुरुआत की है भारत ने।
वैसे आज के मैच पे अगर एक नजर डाली जाए तो भारत की शुरुआत ना इतनी अच्छी नहीं रही थी और रोहित शर्मा दूसरे ही ओवर में 7 रन बना के आउट भी हो गए। इसके बाद हालांकि राहुल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 27 गेंद पे 4 चौकों और 3 छक्कों के साथ 56 रन बनाए। कप्तान कोहली ने उनका बखूबी साथ निभाते हुए 32 गेंद में 45 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल था। आज की जीत के साथ क्या ये समझा जाए कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम क्या कमतर है भारत की क्रिकेट टीम से?
बिल्कुल कमतर नहीं कहूंगा मैं। एक ही मैच हुआ है, पहला मैच है, तो अभी और 4 मैच बचे हैं इस श्रृंखला के, तो अभी हमको देखना पड़ेगा। श्रेयस अय्यर ने उनको जो कॉन्फिडेंस मिला ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलने के बाद, उन्होंने आज दर्शा दिया कि कितना अच्छा वो खेल सकते हैं और उन्होंने दिखा और वो अच्छी बैटिंग की उन्होंने आज।
न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन कॉलिन मुनरो ने बनाए, इसके अलावा कप्तान केन विलियमसन ने भी हाफ सेंचुरी जड़ी। और अब अगला मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच में 26 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा।
जैसा कि आप जानते हैं बीबीसी हिंदी रेडियो का प्रसारण अब बंद होने जा रहा है, माफ करिएगा। इसी सिलसिले में बता दूं आपको कि कल बीबीसी इंडिया बोल में आप सुनेंगे बीबीसी श्रोताओं के अपने अनुभव और बीबीसी से जुड़ने की उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस अब देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका है और 800 से ज्यादा लोगों को संक्रमित भी कर चुका है। चीन में इस वायरस की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने JNU के छात्रों को अंतरिम राहत देते हुए कहा है कि जिन छात्रों ने अभी तक नए अकादमिक सत्र के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है वे अब पुराने हॉस्टल मैनुअल के आधार पर ऐसा कर सकते हैं। इराक की राजधानी बगदाद में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि इराक में मौजूद सभी अमरीकी सैनिकों को जल्दी से जल्दी यहां से निकाल दिया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने पूर्वी अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा के लिए और इस खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद की अपील की है। ये समस्या रेगिस्तानी टिड्डियों के विशाल झुंड के हमले के कारण हुई है। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारत के मुख्य अतिथि होंगे। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी कल शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। अब देखभाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।